ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया देश के नाम संबोधन। बीमारी और भुखमरी से लोगों को बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री का कथन। अतिरिक्त 25 लोग हुए इलाज के बाद ठीक। अपने बाल में कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या पहुंची 1 से 12। आज 79 लोगों में पाया गया कोरोना वायरस का संक्रमण। अब नेपाल में संक्रमित लोगों की कुल संख्या पहुंची 682 और नेपाल के बीते आर्थिक वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और सुरक्षा परिषद के काम कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी समक्ष किया गया पेश। और विश्व में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 55,42,000 से अधिक। संक्रमितों में से 23,21,000 से अधिक लोग इलाज के बाद हुए ठीक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि बीमारी और भूख से लोगों को बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देश के नाम आज संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए सरकार आवश्यक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महामारी से लड़ने के लिए सभी सरकारी निकाय तैयार है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी समक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सरकार के बीते आर्थिक वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और सुरक्षा परिषद के काम कार्यवाहियों के विषय में अलग अलग प्रतिवेदन आज पेश किया है। परसा के नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज में इलाज के दौरान इसी जेठ 4 गते 12 की कलैया गांवपालिका वार्ड नंबर 7 के 70 वर्षीय पुरुष की मौत हुई थी। आज ये बात साबित हो गई कि उनकी मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई थी। इसके साथ ही नेपाल में कोरोना के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4 पहुंची है। इसी बीच कोरोना से मुक्त होने वाले की संख्या 137 पहुंची है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 682 पहुंची है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. विकास देवकोटा ने दी। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति ने कोरोना वायरस के रोकथाम तथा नियंत्रण पर केंद्रित होकर आगामी आर्थिक वर्ष के बजट का विनियोजन करने का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को निर्देशन दिया है। समिति की आज की बैठक ने शराब और सुर्तिजन्य पदार्थ पर टैक्स बढ़ाने के साथ ही कर के से आने वाले राजस्व स्वास्थ्य क्षेत्रों पर केंद्रित होकर निवेश करने का सरकार को सुझाव दिया है। ये जानकारी सभापति जयपुरी घरती ने दी। प्रतिनिधि सभा की कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति ने देशभर बनाए गए क्वारंटीन और निर्माणाधीन क्वारंटीन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड अनुसार व्यवस्थित करने का सरकार से आग्रह किया है। समिति के सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल की अध्यक्षता में हुई बैठक ने सरकार से ऐसा आग्रह किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
14-15
बजारमा नयाँ के छैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15 मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। पाल्पा में 230 बेड का कोविड सेंटर बनाया जाएगा। तानसेन के भुसलडाड़ा मावी और भुसलडाड़ा में बन रहे वृद्धाश्रम तथा लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल भवन में और तानसेन नर्सिंग स्कूल में कर उतनी संख्या के आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने की जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी यादव सुवेदी ने दी। 12 जिले में आज एक ही दिन 23 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। इसी के साथ 12 में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 39 हो गई है, जिनमें जीतपुर सिमरा के क्वारंटीन में रहे 2 लोग ठीक होकर घर वापस लौट गया है। 12 में अब 37 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण होने की जानकारी 12 के प्रमुख जिला अधिकारी रुद्र प्रसाद पंडित ने दी। भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के आसपास रहे निम्न चापीय प्रणाली के आंशिक प्रभाव नेपाल में भी होने की बात मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने बताई है। महाशाखा ने आगामी 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन निकालकर नेपाल में भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के आसपास रहे निम्न चापीय प्रणाली के आंशिक प्रभाव के साथ स्थानीय वायु के प्रभाव होने की जानकारी दी गई है। बागमती प्रदेश सभा की छठा बजट अधिवेशन आज से शुरू हुआ है। आज दोपहर 2 बजे के लिए प्रदेश सभा की बैठक बुलाई गई थी। आज आगामी आर्थिक वर्ष के बजट के लिए प्रस्तुत की जाने वाली आर्थिक पक्ष के सैद्धांतिक विषय में विचार विमर्श के लिए विधेयक प्रस्तुत होने की जानकारी प्रदेश सचिवालय ने दी। प्रदेश सभा की बैठक सभा कक्ष में सामाजिक दूरी कायम कर बैठने के लिए कुर्सी और सैनिटाइजर की व्यवस्था मिलाई गई थी। इस बात की जानकारी सभामुख शानू कुमार श्रेष्ठ ने दी। भारत के विभिन्न शहर से पर्वत जिला में उधार कर लाए गए 37 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। जिला के शिवालय मावी ब्लू एंजल होटल और बंदना होटल में उन लोगों को रखे जाने की जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपाल ने दी। कल और आज कर आए 29 लोगों का कल स्वाब संकलन और परीक्षण के लिए पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के प्रयोगशाला में भेजा गया है और बाकियों का स्वाब संकलन करने की तैयारी की गई। ये जानकारी पर्वत अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर शिशिर देवकोटा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 55,42,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण अब तक 3,47,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 23,21,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा कहर मचाया है। इसके बाद ब्राजील में कोरोना का कहर जारी है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 97,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.3 और न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया देश के नाम संबोधन। बीमारी और भूखमरी से लोगों को बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री का कथन। अतिरिक्त 25 लोग हुए इलाज के बाद ठीक। अब नेपाल में कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या पहुंची 112। आज 79 लोगों में पाया गया कोरोना वायरस का संक्रमण। अब नेपाल में संक्रमित लोगों की कुल संख्या पहुंची 682। सरकार के बीते आर्थिक वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और सुरक्षा परिषद के काम कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति देवी भंडारी समक्ष किया गया पेश। और विश्व में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या पहुंची 55,42,000 से अधिक। संक्रमितों में से 23,21,000 से अधिक हुए इलाज के बाद ठीक। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।